जो उसका पहला अध्याय है उसका 15 पद से लेकर 17 पद तक। अगर एक बात, अगर मुख्य बात यहाँ पे हम देखेंगे तो वहां पर यह है, सुसमाचार शुभ संदेश है, क्योंकि यीशु संपूर्ण सृष्टि से श्रेष्ठ है। सुसमाचार शुभ संदेश है क्योंकि यीशु संपूर्ण सृष्टि से श्रेष्ठ है, संपूर्ण सृष्टि में श्रेष्ठ है। द गॉस्पल इज द गुड न्यूज बिकॉज जीसस इज सुप्रीम ओवर क्रिएशन, ओवर ऑल क्रिएशन। द गॉस्पल इज द गुड न्यूज, इट इज द गुड न्यूज प्रिसाइसली बिकॉज जीसस इज सुप्रीम ओवर ऑल क्रिएशन। ये हम पहले ध्यान के उसके 15 पद से 17 पद में देख रहे हैं। द रीज़न वाई हम लोग गॉस्पल गॉस्पल करके बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने आरंभ में देखा था, पहले खंड में, पहले पद से लेकर के आठवें पद में, सुसमाचार विश्वासियों के जीवन में क्रिस्त के लिए विश्वास, विश्वासियों के लिए प्रेम इस जीवन में और इस जीवन के बाद आशा उत्पन्न करता है। रिमेंबर दैट, पहले खंड में पहली बार हम लोग कहते हैं, फिर दिन पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो 9वें पद से लेकर 15 पद में हमने कहा था कि सुसमाचार एक विश्वासी को परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ने में सहायता करता है, एक विश्वासी के भीतर उत्पन्न करता है ज्ञान और सामर्थ। एंड ये सुसमाचार से संबंधित, क्योंकि सुसमाचार इनके पास पहुंचा है, इन कुलूसियों के विश्वासियों के पास सुसमाचार इपफ्रास के द्वारा पहुंचा था। सुसमाचार जब पहुंचा है, इसके कारण उनके अंदर आशा है, उनके अंदर विश्वास है, उनके अंदर प्रेम है, उनके वो सामर्थ्य में बढ़ सकते हैं, वो ज्ञान में बढ़ सकते हैं। आज हम जो देख रहे हैं यहाँ पे 15 पद से लेकर 17 पद में, ये कैसे जुड़ा, कैसे, हाउ इज इट कनेक्टेड टू द प्रीवियस सेक्शन, ये कैसे जुड़ा हुआ है एकदम से, वहाँ क्यों क्यों एकदम से पौलुस 15 से 17 पद को लिख रहा है। एक्चुअली 15 से 20 एक गीत है, एक हिम है 15 से 20 तक की, लेकिन हम उसको अगली बार देखेंगे 15 से 20 15 20। लेकिन हमारे समय की कमी होने के कारण हम लोग कुछ पदों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये 15 से 17 में सृष्टि पे, और फिर 18 से 20 हम लोग देखेंगे नई सृष्टि में कैसे प्रभु जी यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं। तो सुसमाचार शुभ संदेश है, तो दोनों शब्द एक ही जैसे हैं ना, शब्द, आई मीन काइंड ऑफ रेपिटेशन ना, द गॉस्पल गुड न्यूज, द गॉस्पल इज गुड न्यूज, सुसमाचार शुभ संदेश है। तो हम दोहरा रहे हैं बात को ना, एक तरह से दोहरा रहे हैं, लेकिन हम दोहरा दे, इज अ रीजन वाइज, जब हम सुसमाचार की बात करते हैं तो सुसमाचार क्या है, व्हाट इज द गॉस्पल, सुसमाचार क्या है, है क्या सुसमाचार, वर्सेस 12 एंड 13 एंड 14। पिछली बार हमने देखा था, लास्ट टाइम है ना, पिछली बार हमने देखा था 12 से लेके 14 पद तक सुसमाचार ये है, व्हाट इज द गॉस्पल, सुसमाचार क्या है। सुसमाचार एक व्यक्ति विशेष के बारे में है, सुसमाचार हम जो चाहें वो नहीं है, शुभ संदेश हम जो चाहें वो नहीं, हम अपनी मर्जी से जो चाहें कह नहीं, ये एक व्यक्ति विशेष यीशु मसीह के बारे में। क्या है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमको पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकार में सहभागी बनाया है। रिमेंबर दैट, वर्स 12 में हमने देखा था, और परमेश्वर पिता ने, सुसमाचार ये है कि परमेश्वर पिता ने हमको अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा लिया है, छुड़ा करके क्या किया है, वर्स 13 में अपने प्रिय पुत्र के राज में सहभागी कराया है। दिस इज द गॉस्पल, ठीक है, ये गॉस्पल का ये परिणाम है, क्योंकि सुसमाचार यीशु मसीह ने जो किया है उसके जीवन के द्वारा, जीवन मृत्यु के द्वारा, ये परिणाम है, सुसमाचार का प्रभाव है, इसके कारण हुआ है, यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण। 13 पद ने उसे हमको छुड़ा करके राज में प्रवेश कराया, 14 पद ने उससे हमको छुटकारा मिला है। सुसमाचार क्या, छुटकारा, पापों से क्षमा, 14 पद में पापों से क्षमा मिली है, यह है छुटकारा, यह है सुसमाचार। तो अगर सुसमाचार ये है, तो ये सुसमाचार अच्छी खबर कैसे बन जाता है हमारे लिए, ये अच्छी खबर हमेशा हमारे लिए कैसे रहती है, ये कैसे संभव है कि जो बातें 12 से पद में 14 पद में कही जा रही हैं, ये वास्तव में हमारे जीवन में लागू हो सकती हैं। जो बातें 12 से 14 पद में कही गई हैं, वो तभी सच में लागू हो सकती हैं, वो सच में सुसमाचार तभी बन सकता है, सच में इसका लागूकरण क्यों हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति करा रहा है हमारे लिए 15 पद से 17 पद में, वो सर्वश्रेष्ठ है। 15 से 17 पद में जो व्यक्ति करा रहा है काम, वो सर्वश्रेष्ठ, वो आम आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं है, वो सामान्य आदमी नहीं है, वो विशेष है। जो 15 से 7 जो जो कुछ जो हम बात कह रहे हैं कि सुषम परमेश्वर के राज अंधकार के राज से छुड़ा करके पुत्र के राज में शामिल किया जाना, हमें बात किया जा रहा है कि संतों के साथ हम उत्तराधिकार में सहभागी हो रहे हैं, बात की जा रही है पापों की क्षमा के छुटकारे की, ये संभव कैसे, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि वर्सेस 15-17 पद में जो आदमी है जिसके बारे में बात हो रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई नहीं, वो अतुल्य है, अतुल्य है। जब हम लोग बात करें अंधकार के राज से छुड़ा जाकर के पुत्र के राज में प्रवेश करने के बाद, तो कई बार लोग सोचते हैं अरे क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि हम छुड़ा लिए गए एक राज्य से और फिर यहां से हम इस राज्य में आ गए, हो सकता है फिर से वापस चले जाएं, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। क्या क्या ये ऐसा हो रहा है यहां पे दो बराबर शक्तियां हैं, दो बराबर ताकतें हैं, यिन यांग के समान ना, दो ताकतें बराबर हैं, काला सफेद, दिन रात, है ना, शुभ लाभ अच्छा बुरा, कभी कभी इनकी विजय होती कभी कभी इनकी विजय होती है, तो एक दिन ये विजय करके हमको छुड़ा लाए, अगले महीने ये आकर के फिर वापस ले आएंगे हमको, हो सकता है ना। जब हम लोग राजनीतिक बात करते, जब हम लोग देशों की भौगोलिक राज्यों की बात करते, तो ऐसी तो लड़ाई होती है, किसी राज्य पे किसी क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, फिर कुछ समय वहां के जो क्षेत्र के लोग हैं वो उनके हो गए, फिर कुछ समय बाद वापस आके फिर से छुड़ा के ले गए। यहां पे संभव नहीं है, यहां पे जिसके राज्य में हमको प्रवेश कराया जा रहा है, परमेश्वर पिता हमको पुत्र के राज्य में प्रवेश करा रहा है, और जो ये जो पुत्र है, ये जो पुत्र है, इसके बारे में जो सुसमाचार है, इसके बारे में जो खबर है, उसकी जीवन, उसका मृत्यु, उसका पुनरुत्थान की जो खबर है, जिससे हमको फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, अर्थात छुटकारा मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, अंधकार के राज से छुड़ा करके पुत्र के राज में प्रवेश कराए जाते हैं, ये पक्की बात है, ये पुख्ता बात है, ये 100% डन डील है, ये हो गया है, ये ऐसा सौदा है जिसे मुकरा नहीं जा सकता है, ये खत्म हो गया। क्यों हो गया पूरा? क्योंकि जो बंदा कर रहा है ये काम, जिसके वजह से हो रहा है ये काम, वो संपूर्ण सृष्टि पर, संपूर्ण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। सो पौलुस जो है यहां पे 15 पद, एक्चुअली आई विश हमारे पास समय होता तो हम लोग बैठ करके 15-20 पूरा देखते हैं, जो शब्द हैं इतने इतने भरे हुए शब्द हैं, अर्थ से ठुसे हुए हैं, लोडेड, भरे हुए, बिल्कुल ठूस ठूस के, एक एक शब्दों में गहराई है, ये वजनी शब्द हैं, ये भारी शब्द हैं, यीशु मसीह का वर्णन करते हुए, यीशु मसीह के बारे में बात करें, तो एक तरह से वो कह रहे हैं वहां के कुलूसियों के विश्वास से, कह रहे हैं घबराओ नहीं, डरो नहीं, परेशान मत हो, ये मत सोचो पता नहीं हमारा उद्धार जो हुआ है, छुटकारा है, वो निश्चित होगा कि नहीं होगा, आज हुआ है कल चला जाएगा, पता नहीं किस यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, ये यीशु मसीह है कैसा, हो सकता है आज तो ठीक है सब, कल पता नहीं क्या होगा। पौलुस कह रहा है नहीं भाई, परेशान मत हो, विचलित मत हो, तुम्हारी आंखें लगी हो यीशु की ओर, जो यीशु जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिस सुसमाचार की बात हम कर रहे हैं, वो सुसमाचार शुभ संदेश इसलिए है क्योंकि जो यीशु मसीह, जो उसका विषय वस्तु है, जो उसका कंटेंट है, जो मेन जन है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ नहीं होते तो शुभ संदेश खाली एक अच्छी कल्पना होती, तो शुभ संदेश एक सुनने में अच्छा लगता हमको, भावनात्मक रीति से बढ़िया होती, लेकिन शुभ संदेश सच में अच्छी खबर हमारे लिए होती, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, सो हाउ यू गेट दिस थिंग, इट्स जस्ट वन थिंग, एक ही बात है, 10 बात नहीं, एक ही बात है, क्योंकि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? आप ये संदेश सुनकर सो नहीं सकते, अगर आप सो रहे तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है तो ये शुभ संदेश, ये जो सुसमाचार है, सच में हमारे लिए अच्छी खबर है। तो हम लोग ध्यान देंगे यहां पे 15-17 में ये सुसमाचार क्यों है हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं, यीशु मसीह सबसे बड़े कैसे हैं, हमारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा, हमारे मानने से थोड़ी ना कि वो सबसे बड़े हैं. वो क्यों हैं सबसे बड़े, वो क्यों हैं? वर्स 15 15 पद में दो बातें यीशु मसीह के बारे में, दो बातें यीशु मसीह के बारे में जो दिखाती हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं. नंबर वन, नंबर वन, पहली बात, वो जो अदृश्य परमेश्वर है उसका प्रतिरूप है. नंबर वन, जो वो अदृश्य परमेश्वर है उसका प्रतिरूप है. और नंबर टू, वो सृष्टि में पहलौठा है. ठीक है, सृष्टि में पहलौठा है और प्रतिरूप है. जब 15 पद में पौलुस लिख रहा है यहां पे, वह तो, वह कौन? यीशु ख्रीष्ट. वह कौन? यीशु मसीह. वो जिसके द्वारा हमको छुटकारा मिला है, वह जिसके राज में हमने प्रवेश किया है, वो जो है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है. तो वो शुरू करता है अदृश्य परमेश्वर से. क्यों शुरू करता है अदृश्य परमेश्वर से? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर महान है. परमेश्वर की विशेषताएं क्या है? परमेश्वर की विशेषता ये है कि परमेश्वर आत्मा है. परमेश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है. परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है. पहला तिमुथियुस 6 उसका 16 पद, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है. पहला तिमुथियुस 1 उसका 6 पद, यही हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं. पहला तिमुथियुस 6 उसका 16 पद, उसमें क्या लिखा है? वह परमेश्वर, 1 Timothy 6:16, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है, अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे किसी मनुष्य ने ना तो देखा है ना देख सकता है. परमेश्वर ज्योति है, अगम्य ज्योति में वास करता है, वो आत्मा है, उसका कोई आकार नहीं है, उसको किसी मनुष्य ने ना तो कभी देखा है ना देख सकता है. ध्यान दीजिए इस बात को, ना तो देखा है ना देख सकता है. ठीक है, जो उन्होंने उसका पहला दिया उसके 18 पद में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा. इसीलिए पौलुस कह रहा है कुलुसियों उसके पहले अध्याय में 15 पद में, वो तो अदृश्य परमेश्वर. तो वो जो दृश्य नहीं है, जिसको देखा नहीं जा सकता. क्यों नहीं देखा जा सकता है? क्योंकि वो आत्मा है, क्योंकि वो निराकार है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो शुद्ध है. वो अगम्य ज्योति में वास करता. आप और हम क्या हैं? हम और अशुद्ध हैं. नैतिक रीति से हम लोग ठीक नहीं हैं, असक्षम हैं उसके सामने खड़े होने के. उस हमारी अपवित्रता कभी भी हमको इस योग्य नहीं बनाएगी कि हम उस पवित्र परमेश्वर को देख सकें, उसके सामने खड़े हो सकें. तो वो जो पवित्र परमेश्वर है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जो हमारी समझ से बाहर है, हमारी बुद्धि से बाहर है, वो असीमित है, हम सीमित हैं. वो हमारी बुद्धि से बाहर है, उसको हम अपने बुद्धि का उपयोग करके, मस्तिष्क का उपयोग करके उसको जान नहीं सकते. हमारी ज्ञान की सीमा उसको कभी भी सीमित नहीं करने पाएगी. तो हम कैसे देखेंगे उसको? हम कैसे जानेंगे? हम कैसे समझेंगे कौन है वो परमेश्वर? यही बात यूहन्ना उसके पहले अध्याय में 18 पद के दूसरे खंड में कहता है. यूहन्ना, जब यूहन्ना का लेखक यीशु मसीह के बारे में बात करता है, तो पहले वो कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है. किसी ने कभी नहीं देखा है. लेकिन जो परमेश्वर एकलौता है, जो एकमात्र उसका जो पुत्र है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है, उसने हमको बताया है. तो जो पहली जो बात है, क्यों करके यीशु मसीह संपूर्ण सृष्टि पे सर्वश्रेष्ठ है, संपूर्ण सृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है. पहली बात, जो मुख्य बात यहाँ पे यह है, क्योंकि वो परमेश्वर का सिद्ध प्रतिरूप है. परमेश्वर को हम पर प्रकट करता है. किस परमेश्वर को? अदृश्य परमेश्वर को. वो परमेश्वर पवित्र है, हम उसके पास नहीं आ सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हमारे अंदर क्षमता नहीं उसको समझने की, जानने की. लेकिन प्रभु जी ने अपनी दया में होकर के परमेश्वर पिता को, परमेश्वर पुत्र ने हम पर प्रकट कर दिया है. तो जब यहाँ पर जब बात की जा रही प्रतिरूप की, तो कहने का मतलब यह है, जैसा वो है वैसा ही पुत्र है. जैसे पिता है वैसा ही पुत्र है, जैसा बाप वैसा बेटा. वो हमको दिखाता है कि कौन है परमेश्वर हमारा. अगर हम प्रभु को जानना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को समझना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे. जब हम अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर कौन है। यही बात यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय में, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 8वां पद। फिलिप्पुस ने उसे कहा, हे प्रभु हमको पिता दिखा दे और यही हमारे पर्याप्त है, हमारे पर्याप्त है। यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर में कहा 9वें पद ने, यीशु ने उसे कहा, फिलिप्पुस मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ फिर भी तू नहीं जानता, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इससे ज़्यादा डिविनिटी का क्लेम, ईश्वरत्व का दावा कोई और नहीं कर सकता है। कई बार खास तौर से मुसलमान लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने कहाँ पे कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह को ये कहने की ज़रूरत नहीं मैं परमेश्वर हूँ। जब यीशु मसीह इस तरह की जब बातें करते हैं, जब बातें यीशु मसीह इस तरह करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, तो दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं, मैं परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह क्या कहते हैं, इससे पहले अब्राहम था मैं हूँ। कौन कह सकता है इससे पहले अब्राहम था मैं हूँ? तो यीशु मसीह वो एकमात्र जीवित सच्चे परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका इमेज है, उसका स्वरूप है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, अपने आप का प्रतिनिधित्व करने के लिए। लेकिन हर मायने में वो मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं कर सकता, एक तरह का प्रतिरूप था, एक कुछ हद तक की प्रतिरूप था, कुछ हद तक वो प्रतिरूप था, कुछ सीमा तक। लेकिन उस प्रतिरूप में भी, उस इमेज में भी, उस स्वरूप में भी पाप की वजह से गड़बड़ी आ गई। यहां पे जिस प्रतिरूप की बात की जा रही है वो आदम से कहीं बढ़ करके है। यह जो दूसरा आदम है, ये जो अंतिम आदम है, यह है परमेश्वर का जो प्रतिरूप है, परमेश्वर के स्वरूप में है, उसके जैसा है। वो उसको संपूर्णता से 100% उसके गुणों को, उसके चरित्र को, उसकी योग्यताओं को, उसके कार्यों को, उसके उद्देश्यों को, उसकी मनसाओं को हम पर प्रकट करता है। जैसा परमेश्वर है वैसा ही पुत्र है, जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा बाप वैसा बेटा। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके जैसा कोई नहीं। वो जो नैतिक दूरी हमारे और परमेश्वर के बीच में थी यीशु मसीह ने कम कर दी। वो जो अगम्य ज्योति जिसको हम नहीं देख सकते थे, कभी आपने सूरज की ओर दिन के समय गर्मी में ऊपर आंखें उठा करके देखने का प्रयास किया है, आपकी आंखें कैसे चौंधिया जाती हैं, वो उसको हटाने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बन गए। हम लोग दिसंबर शुरू हो गया है, पहली तारीख से लोग आगमन करके मनाते हैं, एडवेंट करके मनाते हैं, यीशु मसीह के आने की खुशी की तैयारी करने लगते हैं। 25 तारीख को संसार भर में अनेकों मसीही लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के, संप्रदाय के, पंथ के मसीही लोग इसी बात को स्मरण कर रहे हैं, इसी बात को। बड़े दिन में क्रिसमस के समय, क्रिस्ट जन्मोत्सव में हम क्या स्मरण करेंगे, क्या याद करेंगे? वो जो अदृश्य परमेश्वर था, जिस परमेश्वर के पास हम नहीं जा सकते थे क्योंकि वो अति पवित्र है, शुद्ध है, वैभवशाली है, प्रताप में है, हमारी बुद्धि से बाहर है, हमारी क्षमता से बाहर है, हमारे अंदर कोई ये हमारे संभव नहीं कि हम उसके निकट खड़े हो सकते, अपनी आंखों को ऊपर उठा के नहीं देख सकते उसको, हमारी आंखें चौंधिया जाती, वो अति पवित्र है, अति महान है। उसने क्या किया, उसने अपने पुत्र को, जो परमेश्वर है, जिसके अंदर वही महिमा, वही वैभव, वही सब कुछ परमेश्वरत्व है, संसार में मनुष्य बनकर के आ गया, उसका प्रतिरूप बनकर के उसको हम पर प्रकट करने के लिए। जब इब्रानियों को हम पढ़ते हैं आज की सुबह, जब इब्रानियों उसका पहला अध्याय में और 3 पद में लिखा है, वो उसकी महिमा का प्रकाश है, महिमा का प्रकाश। इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसका 3 पद, वो उसकी महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व का प्रतिरूप है। तो महिमा और महिमा का प्रकाश, तो जो उसकी महिमा है, महिमा क्या चीज है, महिमा को नापा कैसे जा सकता है, परमेश्वर की महिमा को कैसे नापेंगे? परमेश्वर की महिमा ही ज्योति है, परमेश्वर की महिमा ही प्रकाश है। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, जब हम लोग देखेंगे सिंहासन पे क्या है, वहां पे प्रकाश और महिमा और ज्योति ही दिखाई देती है। परमेश्वर बैठा हुआ है सिंहासन पे, और जब यूहन्ना अपने सरों को उठाता देखता है तो क्या दिखा, सिंहासन पे क्या दिखाई दे रहा, महिमा और ज्योति और प्रकाश, हर तरह से ज्योति और प्रकाश। लेकिन वो ज्योति और जो परमेश्वर जो महिमा है और महिमा से जो ज्योति निकल रही है, कैसे करके आप ज्योति को महिमा से अलग करेंगे? महिमा कैसे दिख रही है? ज्योति की वजह से। अब ज्योति को महिमा से कैसे अलग करेंगे? ये है जो यीशु मसीह है, इसकी महिमा का प्रकाश है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसकी महिमा को देखना है तो प्रकाश हम पे प्रकट करेगा, और ये प्रकाश कौन है? ये यीशु मसीह ही है, साथ में चल रहा है यह प्रकाश, और ये उसके तत्व का प्रतिरूप है। अगर कोई चीज है जो प्रभु को बनाती है, अगर कोई चीज है जो ईश्वर को बनाती है, अगर कोई चीज है जिससे परमेश्वर बना हुआ है, अगर कोई कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई चीज कोई वस्तु, परमेश्वरत्व, वो जो तत्व है, वो जो एलिमेंट है, वो जो वस्तु है, वो जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, शब्द कम पड़ जाएंगे हम लोग समझने के लिए, यू कैन नॉट एक्सप्लोर दिस, आप नहीं जा सकते। तो जो चीज प्रभु है, जो चीज प्रभु को प्रभु बनाती है और हमसे अलग करती है, वही चीज है यीशु मसीह। यू गेट इट? जो चीज प्रभु को प्रभु बनाती है, जो चीज, जो वस्तु, तत्व, सामग्री, मटीरियल, जो चीज, अगर कोई चीज है तो, लेकिन वो चीज है जिसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता, हमारी बुद्धि से बाहर है, अगम्य है, वो वही चीज का प्रतिरूप है, उसी का इमेज है, उसी का समानता है, उसी का स्वरूप है। तो इसको देखोगे तो मानो इसको देखोगे, तो इसको जानोगे तो मानो इसको जानोगे, तो इसके राज्य में प्रवेश करोगे तो मानो इसके राज्य में प्रवेश कर रहे हो। इसीलिए हमारे लिए एडवेंट, क्रिसमस, बड़ा दिन बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। हम लोग क्यों बड़ा दिन मनाते हैं? हम लोग यही मनाते हैं कि यह जो प्रतिरूप है, यह जो इमेज है, यह जो तत्व का प्रतिरूप है, द वेरी थिंग, वेरी एलिमेंट, वही चीज जो ये है, जो मनुष्य बन गया, जिसकी वजह से अब हम परमेश्वर को देख सकते, पहले नहीं देख सकते, हम लोग अंधकार में टटोलते रहते, प्रभु जी कौन है, पता नहीं कौन है प्रभु जी, प्रभु जी ऐसे हैं। तो इसीलिए हमारे धर्म में, हमारे देश में क्या कहते हैं, जब बात करते हैं लोगों से, जब फिलोसॉफिकल, जब उसमें आते हैं, जब ईश्वर, जब धर्म विज्ञान में, जब जब फिलोसॉफी में, दर्शन शास्त्र में, जब दर्शन में आते हैं, तो उन लोगों को जब जब भगवान को बताना, तो कैसे करेंगे वो लोग, नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, भगवान ये नहीं है, भगवान ये नहीं है, भगवान ये नहीं है, दे कैन नॉट, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्णित नहीं कर सकते हैं, वाया निगेशन, विया निगेशन, नकारात्मक बातें बोलने के द्वारा। परंतु अब यीशु मसीह के कारण हमें ये कहने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ये नहीं है, परमेश्वर वो नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। अब हम कह सकते हैं परमेश्वर कैसा है, यीशु मसीह के जैसा है, परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा पवित्र है, परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा प्रेमी है, परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा अद्भुत है। यू लुक एट क्राइस्ट, आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे और आप प्रभु की, यही काम है। इसीलिए सुसमाचार शुभ संदेश है, इसीलिए हमको मालूम है, एक बार हम छुड़ा ले गए तो हम वापस नहीं जाएंगे, शैतान का हमारे पर कंट्रोल नहीं है, दुष्ट आत्माएं हमको पराजित नहीं कर सकती हैं, हमको परेशान नहीं कर सकती हैं, हम प्रभु के हैं। 15 वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो परमेश्वर को हमें परिपूर्णता से जैसा वह दिखाता है, वो हमको हमारे सामने प्रदर्शित करता है। अब हम अपनी आंखों से, ये शरीर की आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं। इमेजिन दिस 2000 साल पहले यरूशलम में वो जो आदमी था, जो चल रहा था यरूशलम की सड़कों पे, धूल भरी सड़कों पे जो चल रहा था, वो परमेश्वर था, अदृश्य परमेश्वर का सिद्ध प्रतिरूप 2000 साल पहले। That's it. ये संभव हुआ हाइपोस्टैटिक यूनियन की वजह से। ये हम लोग बार बार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, द्वि स्वाभाविक संयुक्ति, जो परमेश्वर है, जो दित्य जन है त्रिएकता में। इसीलिए त्रिएकता बहुत जरूरी है, ये त्रिएकता ऐसी शिक्षा जो आदमी नहीं बना सकता है, ह्यूमन क्रिएशन नहीं है, इन्वेंशन नहीं है। जो दित्य व्यक्ति है त्रिएकता का, वो मनुष्य बन करके आ गया, जो अदृश्य था, जो असीमित था, जो पवित्र था, जो जिसको समझा नहीं जा सकता, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, हमारे दिमाग से बाहर है, अगम्य है, अबोध है, जिसको छुआ नहीं जा सकता था, वो लगभग 2000 साल पहले उसने क्या किया, सीमित को जोड़ लिया, शरीर को धारण कर लिया, 2000 साल पहले। दो स्वभाव, ईश्वर और मनुष्यत्व, मनुष्यत्व को उसने जोड़ लिया ताकि हम क्या कर सकें, हम लोग उस अदृश्य परमेश्वर को इसके द्वारा देख सकें, क्योंकि अदृश्य परमेश्वर को देखने के लिए दृश्य को देखना पड़ेगा। हम और आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, जी गेट इट, आई होप यू गेट इट, एंड आई होप कि जब आप ये सुनते हैं, सोचते हैं, तो आप उत्साहित हो जाते हैं, प्रभु जी ने मेरे लिए ऐसा किया, यीशु मसीह ने किया आपके लिए, अपने शिष्यों के लिए, अपने लोगों के लिए। ना सिर्फ वो परमेश्वर प्रतिरूप है, एग्जैक्ट कॉपी, इमेज, आइकॉन, चित्र है, जैसा वो है वैसा वही है, लेकिन वो जो है समस्त सृष्टि में पहलौठा है। इसके बाद हम लोग कर चुके हैं, वो जो अदृश्य था वो दृश्य बन गया, ताकि जो हम लोग सीमित लोग हैं, जो हम देह में हैं, हम लोग उसको देख सकें, छू सकें, जान सकें। इसी के बाद पहले यौना में जब यौना लिखता है ना, कहता है जिसको हमने देखा, जिसको हमने छुआ, जिसको हमने सुना, पहले उन्होंने उसका पहला अध्याय, पहले यौना उसका पहला अध्याय, उसे क्या उस जीवन के वचन के संबंध में, उस जीवन के वचन के संबंध में, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1:1, उस जीवन के वचन के संबंध में जो आदि से था, फ्रॉम इटर्न, आई मीन सिंस, कब से आदि से, कब से, जो आदि से था। आदि से कौन है भैया, कौन है आदि से? वो अदृश्य परमेश्वर। कौन है आदि से? वो महान पवित्र परमेश्वर। कौन है आदि से? वो सिद्ध परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर। पहले ना पहला अध्याय, उसका पहला पद, वो जो आदि से था, जिसके बारे में हमने सुना था, उसके जो आदि से था उससे हमने सुना, नंबर एक सुना, नंबर टू अपनी आंखों से देखा, नंबर तीन ना सिर्फ देखा लेकिन ध्यानपूर्वक देखा, और साथ ही साथ हमने, हमारे हाथों ने उसको स्पर्श किया, हमारे हाथों ने स्पर्श किया। जो मिस्ट्री, जो रहस्य की बात है, अद्भुत और सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन हिस्ट्री, संपूर्ण इतिहास में एक बड़ा आश्चर्यकर्म, बड़ा आश्चर्यकर्म मालूम क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन गया, मनुष्य बन गया। 15 पद के दूसरे ने तथा समस्त सृष्टि में पहलौठा है। अब यहाँ पे जब बात आते हैं, कई बार लोग इस खंड को उठाते हैं, उसको गलत समझते हैं, उसको तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे ये बात की जाए समस्त सृष्टि में पहला उठाए, तो कहते हैं देखिए यीशु मसीह क्या हुई है, सृष्टि हुई है। यीशु मसीह सृष्टि नहीं है बुद्धिमान लोगों, यीशु मसीह परमेश्वर है हमेशा से, लेकिन वो सृष्टि में आ गए, उन्होंने जोड़ लिया, द्विस्वाभाविक संयुक्ति, हाइपोस्टैटिक यूनियन, उन्होंने देह को जोड़ लिया, शरीर को ऐड कर लिया, फ्लैश को ले लिया उन्होंने, इसलिए वो सृष्टि, वो जो सृष्टि करता है सृष्टि में आ गया, सृष्टि हो करके नहीं परमेश्वर बन गया, यहां से ऊपर नहीं गया, वो जो ऊपर था ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से वापस ऊपर गया, फिर वापस आएगा नीचे ताकि हम सबको ले जाए। वो समस्त सृष्टि में पहला उठा है। तो कई बार जेहोवा विटनेसेस वाले आपके पास आएंगे, देखिए ये पहला उठा है, जिन्होंने चर्च हिस्ट्री पढ़ी, आप लोगों ने कलीसिया इतिहास पढ़ा ना, कुछ लोग बोलते हैं, एक आदमी था, क्या नाम था उसका, एरियस, तो उसने क्या कहा था, देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज नॉट, एक समय था जब वो नहीं था, उसकी क्या की गई, सृष्टि किया गया, उसको बनाया गया, क्योंकि वो लोग ने क्या किया, इस पद को गलत समझा। एक समय था जब यीशु मसीह नहीं था, नहीं बुद्धिमान, कभी भी कोई ऐसा समय नहीं था जब यीशु मसीह नहीं था, लेकिन लगभग 2000 साल पहले ऐसा समय था जब यीशु मसीह मनुष्य बन गया। फर्क है, बहुत फर्क है, फर्क समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? कभी भी ऐसा समय नहीं था जब यीशु मसीह नहीं था, यीशु हमेशा से था, क्योंकि यीशु परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का द्वित्य जन है, वो आत्मा है, अदृश्य था, वो दिखाई नहीं देता था, वो संप्रभु है, लेकिन 2000 साल पहले उसने देह को जोड़ लिया और वो सृष्टि बन गया, सृष्टि में वो पहलौठा हो गया, फर्स्ट बॉर्न, पहला, पहला। जब लोग पहलौठे की बात करते हैं, देखो पहलौठा है मतलब, यह बात हो रही है यहाँ पे, समय की बात हो रही है, सृष्टि बात हो रही है, किस मायने में वो पहलौठा है, किस मायने में पहलौठा है, कहने का मतलब ये, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ये हुआ है, पहले बनाया गया फिर उसके बाद दूसरे लोग बनाए गए। कुछ लोग कहते हैं सारे स्वर्गदूतों में बड़ा है, सिर्फ यही कहा, नहीं, जो शब्द पहलौठा है यहाँ पे, जो अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है पहलौठे का, वहाँ पे मुख्य अर्थ है प्राथमिकता का, प्रधानता का, पहला स्थान का। यहाँ पे जन्म लेने से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर निर्गमन में, उसके चौथे अध्याय में, उसके 22 पद में, निर्गमन उसके चौथे अध्याय के उसके 22 पद में इज़राइल को अपना पलौठा करके पुकारते हैं। निर्गमन उसका चौथा अध्याय उसके 22 पद में, तब तो फिरौन से कहना है, यहोवा यूं कहता है, इज़राइल मेरा पुत्र है, वो मेरा पहलौठा है। तो इज़राइल तो पैदा तो नहीं हुआ था, उसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, उसका किस बात से, पहलौठा मतलब प्राथमिकता है, प्रिय है प्रभु के लिए, सारे देशों में सारी जातियों में। ऐसा तो था नहीं कि इज़राइल से पहले दूसरे देश नहीं थे, तो पहलौठा कैसे हो गया, लेकिन प्रभु ने उसको चुना है, पहला बनाया है, ऊंचा स्थान दिया है, वो प्रभु के लिए विशेष है, वो प्रभु का प्रतिनिधित्व करता है। यही बात भजन उसके 89 उसके 27 पद में, 79 भजन 79 उसके 27 पद में, भजन 79 उसके 27 पद में, जब यहाँ पे पहलौठे की बात हो रही है ना, फर्स्ट बॉर्न की बात हो रही है, तो यहाँ पे पैदा होने से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कई बार लोग पैदा लेने से होते हैं, पैदा हो रहा मतलब बनाया गया है, बनाया होने से कुछ नहीं है, यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है। ये दो पद बहुत महत्वपूर्ण है, इनको लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास यहोवा विटनेसेस वाले आएंगे तो आपको यही बोलेंगे, यहोवा के साक्षियों वाले, उनका यहोवा से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग यहोवा की साक्षी नहीं दे रहे, किसी और की साक्षी दे रहे हैं, दे आर नॉट यहोवा विटनेसेस ट्रूली। भजन 79 उसके 27 पद में, मैं उसे अपना पहलौठा, दाऊद के बारे में बात करते हैं, प्रभु जी कह रहे हैं, मैं उसे अपना पहलौठा और जगत में सब राजाओं को क्या बनाऊंगा, प्रधान बनाऊंगा। तो पहलौठे से मतलब क्या हुआ, फर्स्ट बॉर्न से मतलब क्या हुआ, दाऊद के अपने घर में पहला पैदा हुआ था, दाऊद अपने भाइयों में सबसे पहला पैदा हुआ था, दाऊद अपने भाइयों में क्या था, सबसे आखिरी पैदा हुआ, तो पहलौठा कैसे हो गया। प्रभु जी क्या करें, दाऊद से पहले दूसरे राजा नहीं आए थे, दूसरे राजा आए थे, लेकिन प्रभु जी क्या करें, सब राजाओं में मैं उसको प्रधान बनाऊंगा, मैं उनको बड़ा बनाऊंगा, मैं ऊंचा बनाऊंगा, मेरा वो प्रतिनिधित्व करेगा, उसका उस वो मेरे उसका एक विशेष स्थान होगा मेरे राज में। तो जब यहाँ पे बात की जा रही है 15 पद में यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह कहा जा रहा है संपूर्ण सृष्टि में पहलौठा, तो जो संपूर्ण जो सृष्टि हुई है, जो सब कुछ हम देख रहे हैं, उसमें उसकी प्राथमिकता है, उसका पहला स्थान है, वो सबसे ऊंचा है। ये नहीं कि वो सबसे पहले बनाया गया है, बनाए से नहीं, वो तो हमेशा से था, 2000 साल पहले उसने शरीर को धारण किया, लेकिन वो पहलौठा इस मायने में है कि उसके पास प्रभु का अधिकार है, वो प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहा है सिद्धता के साथ। और अगेन बार बार इस बात को ध्यान रखिएगा, दुई स्वाभाविक संयुक्ति याद रखिए, अगर आप याद रखेंगे इसको, तो आधे प्रश्न जो विरोधी लोग करते हैं उनका आप उत्तर देने में सफल होने जाएंगे। यीशु मसीह जो हमेशा से मनुष्य था, हमेशा से ईश्वर है, परमेश्वर है, देह धारण से पहले वो आत्मा में था, परमेश्वर आत्मा है, उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन लगभग 2000 साल पहले उसने देह को धारण कर लिया, इसलिए इस मायने वो पहलौठा है। वो पहलौठा किस मायने में, एक और मायने में, जी उठो में पहलौठा है वो। यीशु मसीह शरीर में जब आया, यीशु मसीह शरीर में आया तो उसने सिद्ध जीवन जिया, उसने पवित्र जीवन जिया, उसके जीवन में कोई शुद्धता नहीं थी, कोई पाप नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, क्या किया, पापों की कीमत चुकाने के लिए, आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए, मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए, क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो समस्त बचाए हुए लोगों में उनका प्रतिनिधित्व करते हुए पहला जी उठो में पहला है, पहला स्थान है। अगेन नंबर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उससे पहले दूसरे लोग भी जी उठे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वे लोग जो यीशु मसीह के उद्धार के काम के पश्चात जो प्रभु के लोग हैं उनमें पहला स्थान है, जी उठे हुए लोगों में भी, उनमें भी प्रभु का वो पहला जन है, और ये बात हम आगे वाले खंडों में भी देखेंगे। तो यीशु मसीह, ये जो यीशु मसीह हैं परमेश्वर का सिद्ध प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और यीशु मसीह पहलौठा हैं। लेकिन कैसे संभव है ये कैसे संभव, अगर आप सृष्टि की बात कर रहे हैं तो कैसे संभव है, इस बात का प्रत्युत्तर वो 16-17 पद में करेगा, हमको और समझाएगा कैसे यीशु मसीह संपूर्ण सृष्टि के ऊपर सर्वश्रेष्ठ हैं, दो तरीके से हैं, कैसे हैं वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हैं और वो समस्त सृष्टि में पहलौठा है, लेकिन वो कैसे, हाउ कम, ये क्या संभव, कैसे, क्यों पौलुस कह रहा है इस बात को, क्यों कहने पा रहा है पौलुस, दावा क्या है, क्या सबूत क्या, प्रमाण क्या है, हम क्यों माने कि यीशु मसीह वो सच में प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रभु का और सिद्ध प्रतिरूप है, सिद्ध आइकॉन है, इमेज है, और हम क्यों माने कि वो सच में पहलौठा है। 16 पद से हमको और आपको मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, 16-17 पद हमको बताते हैं, क्योंकि सब वस्तुओं की सृष्टि, सब वस्तु की सृष्टि, सब वस्तु की सृष्टि क्या हुआ है 16 पद में, उसी में तीन चीज़ें हो रही हैं 16 पद में, तीन चीज़ें जब सृष्टि की बात हो जा रही है, सब वस्तु की सृष्टि उसी में हो रही हैं 16 पद की शुरुआत में, और 16 पद के अंत में उसी के द्वारा हो रही हैं, उसी के द्वारा। और तीसरी बात 17 पद में, 17 पद के अंत में, सब वस्तुएं अब उसी में रुकी हुई हैं, उसी में रुकी हुई हैं। एक्चुअली माफ कीजिएगा, 16 पद में सब वस्तु उसी में सृष्टि हुई हैं, फिर उसके बाद उसी के द्वारा सृष्टि हुई हैं 16 पद के अंत में, ना सिर्फ उसी के द्वारा लेकिन उसी के लिए, एंड फिर साथ ही साथ में एक और बात आगे चल के हमको बताएगा कि वो सब बातें उसमें रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, बनी हुई हैं। तो कैसे वो सर्वश्रेष्ठ है, वो संपूर्ण सृष्टि में कैसे सर्वश्रेष्ठ है, वो कैसे परमेश्वर का सिद्ध प्रतिरूप हो सकता है, अदृश्य परमेश्वर, वो कैसे पहले उठा हो सकता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। कौन है सृष्टि करता है? परमेश्वर सृष्टि करता है। कौन बना सकता है सृष्टि को? प्रभु। क्या बनाया उसने, क्या बनाया उसने? वर्स 16 में, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की, कितनी वस्तुओं की? सब वस्तुओं की। कोई वस्तु है जो छूट गई है? सब वस्तुओं की। तो पॉलुस क्या कर रहा है, पॉलुस इस पॉइंट को बिलेबर कर रहा है, इस पॉइंट को बार बार समझा रहा है ना, ध्यान से समझा रहा है। वो कह रहा है भाई यार, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। व्हेन यू थिंक अबाउट क्राइस्ट, जब आप यीशु मसीह के बारे में सोचते हो, आप क्या समझते हो यीशु मसीह को? व्हाट डू यू थिंक? ये पैगंबर नहीं है कोई, दिस इज नॉट, ये कोई मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है केवल, ये भविष्यवक्ता नहीं है केवल, ये कोई प्रेरित नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर है। वर्स 16 बहुत ध्यान से, सब वस्तु का मतलब क्या हो भैया? सब वस्तु की सृष्टि हुई उसी में, मतलब उसी में, मतलब क्या हुआ? उसी में, उसी के कारण, वही है स्रोत, वही है उद्गम, वही है रचना सोचने वाला, योजना बनाने वाला। तो उत्पत्ति उसके पहले अध्याय, उसके पहले पद में जब सृष्टि हो रही है तो कौन है वहां पे? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। आदि में वचन था, उसके द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि, उसी में जो भी चीजें हैं अपने अस्तित्व को पाती हैं, यीशु में, इन क्राइस्ट, यीशु में। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो ये संसार नहीं होता। इससे ज्यादा ऊंचा, इससे ज्यादा ऊंचा आदर पॉलुस नहीं दे सकता यीशु मसीह को। ये क्रिस्टोलॉजिकली ये बहुत रिच है, बहुत बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में जो ईश्वर विज्ञान पाया जाता है वो बहुत ही वजनी है, बहुत अधिक यहाँ पे वर्णन किया है। लुक एट दिस टेक्स्ट, ध्यान देखिए नीचे ध्यान से, उसी में सब वस्तु की सृष्टि। हम और आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचना चाहते हैं? हम और आप जब यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं? लास्ट टाइम, पिछली बार आपने कब सोचा था इस तरह के पदों के बारे में? कब विचार किया था? हम कैसे व्यवहार करते हैं यीशु मसीह को? हम कैसे व्यवहार करते हैं यीशु मसीह से? हम क्या सोचते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह को हम लोग क्या सोचते हैं? ऑप्शनल सोचते हैं ना, वैकल्पिक, वैकल्पिक। जब सहूलियत होगी तो हम उससे वास्ता रखेंगे। पॉलुस कह रहा है तुम्हारे पास ये विकल्प नहीं है, तुम सोच सकते हो, तुम जी सकते हो ऐसे, मानो कि यीशु मसीह तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। यीशु मसीह बस हजार रास्तों में से एक, अनेक रास्ते हैं, नाम अलग अलग है, रास्ते अलग है, मंजिल तो एक ही है आखिरकार, फर्क नहीं पड़ता है। दिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, बात तो एक ही, अपनी अपनी आस्था है वैसे। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल फेथ, व्यक्तिगत विश्वास की बात है। अगर आप माने तो नहीं माने कोई बात नहीं, वो माने तो नहीं माने। पॉलुस क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पॉलुस कह रहे हैं अगर तुम मानो तो ना मानो, नहीं मानते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मानते हो तो हम तुमको बता देते हैं। वैसे उसी में सब चीज़ों की सृष्टि हुई थी। किन सब चीज़ों की? सारे ईश्वरों की, सारे देवताओं की, सब शक्तियों की, सब ताकतों की, स्वर्ग की तथा पृथ्वी की। ये जो जो यहाँ पे जो तीन या चार जो समूह है ना, स्वर्ग, पृथ्वी, दृश्य और अदृश्य, सिंहासन और साम्राज्य, जो राजा लोग हैं और अधिकार लोग हैं, यह करने के द्वारा, ये चार जो अलग अलग समूह के का बारे में बात करने के द्वारा उसने क्या किया? सारी बातों को उसने समेट दिया, उसमें सब कुछ समेट दिया। तो चाहे स्वर्ग में कोई बात है तो कोई स्वर्गदूत है, मिकाएल, जिब्राइल, गैब्रियल, कौन है? कौन है स्वर्गदूत? स्वर्ग में कौन है जो स्वर्गदूत? अच्छे स्वर्गदूत और बुरे स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत जो गिर गए, वो स्वर्गदूत जिन्होंने विरोध किया, जो विद्रोह किया, वो भी किसकी सृष्टि हैं? वो भी यीशु मसीह में। हमें तीन तरह से वो कहता है, यीशु मसीह में, उसमें, इन हिम, उसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए। आई मीन उसमें, उसके द्वारा, उसके लिए। लुक विद मी हियर, हम जब हम पढ़ते हैं इन सब खंडों को तो हमारे समझ भी नहीं आता कैसे हम लोग बाइबिल पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम यीशु मसीह के लिए उत्साहित नहीं हो सकते हैं। तो कह रहा है उसी में सब वस्तुओं की, कौन सी सब वस्तुओं की, चाहे स्वर्ग बोलो चाहे पृथ्वी बोलो, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक की, ए से लेके जेड तक की, ए से लेके जेड तक से सारे जो आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला की शुरुआत से लेकर के वर्णमाला के अंत तक की, जो भी है, एक से लेके सौ तक की, बीच की जितने हैं सब कुछ, तो कुछ छूट नहीं गया है, कुछ छूट नहीं गया है। तो स्वर्ग में कोई भी ताकतें हैं, पृथ्वी पे कोई भी ताकतें हैं, तो जो देख सकते हैं आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो आपकी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो चाहे दूरबीन लगा के देखना पड़ता है आपको, या आपको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता है, वो सूक्ष्मदर्शी, वो लगा करके छोटे छोटे जो बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, कभी आपको देखना है माइक्रोस्कोप के नीचे दही लगा के देखिए तो आपके बिलबिलाते हुए कीड़े दिखाई देंगे, चाहे वो हो, वहां से लेकर के जो हमारे शरीर के पेट के अंदर जो हमारे जो भी है, चाहे वो, या फिर अदृश्य ताकतें, आत्मिक ताकतें, जो भी ताकतें हो, आत्मिक ताकतें जो भी हो, भली ताकतें, अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं, जो भी लोग बोलते हैं, दुनिया ऊपरी खेल नीचे खेल, इससे हमको मतलब नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बात ही नहीं। यहां पर जो दृश्य है या अदृश्य है, जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर कुछ है, अगर कोई चीज है जो है, तो वो है यीशु मसीह में। अगर वो है तो वो है यीशु मसीह में, नहीं तो वो है नहीं। बिना यीशु मसीह के कोई चीज है नहीं, यही बात पौलुस कह रहे हैं। इस बात को पौलुस जो है बार बार जोर देके कह रहा है, तो मानो या ना मानो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप मानिए ना मानिए यीशु मसीह को कुछ, आप उसको कहिए सौ में से एक है वो, आप कहिए खाली वो पैगंबर है, आप कहिए वो खाली वो एक रास्ता, कई रास्तों में से, आपके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो तो परमेश्वर वचन क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रही है, यीशु मसीह ने अपने जीवन से क्या सिद्ध कर दिया, क्या दिखा दिया, वो दृश्य अदृश्य सिंहासन तथा साम्राज्य, ऐसी कौन सी ताकत है इस पृथ्वी पर, ऐसी कौन से साम्राज्य है, ऐसे कौन से, कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी है, अशोका द ग्रेट या अकबर द ग्रेट, अशोका महान, अकबर महान, या आज भारत में कोई भी महान, 2022, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, इट डजंट मैटर। सरकारें आएंगी, सरकार जाएंगी, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की, यीशु मसीह है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है, परमेश्वर वचन कह रहा है, 2000 साल पहले लिखी हुई बात है, यीशु मसीह ही है, यीशु ख्रीस्ट है जो सिंहासन और साम्राज्य का बनाने वाला है। कुर्सी लोग नहीं देते हैं, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे गणतंत्र हो, चाहे समाज जो भी हो, या चाहे तानाशाही हो, कुर्सी मिलती, सिंहासन मिलता है यीशु मसीह के कारण। हमारा बहुत परेशान होता ना, ये सरकार है, वो सरकार है, कब आएगी, कौन सी जाएगी, कैसे होगा, क्या करेंगे, वोट देंगे, प्रार्थना करेंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे, हमारा अधिकारों का हनन, हमारे अधिकारों का फायदा लाभ, इससे कोई मतलब नहीं, यीशु मसीह में खत्म। जो भी चल रहा है इस समय, यीशु मसीह में सिंहासन और साम्राज्य, जितने बड़े बड़े आए हैं, जितनी बड़ी बड़ी सभ्यता, चाहे मिस्री सभ्यता हो, चाहे फारस की सभ्यता हो, चाहे चीनी सभ्यता हो, चाहे भारतीय सभ्यता, कोई भी सभ्यता, कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी शासन हो, कोई भी अधिकार हो, बेसिकली पॉलिसी यहां पे मुख्यतः कह रहा है कुछ छूट नहीं गया है। छोटा सा लेके बड़ा तक, छोटी ताकत से लेके बड़ी ताकत, गांव के लेवल से लेकर के बीडीओ से लेकर के नगर पंचायत, गांव के पंचायत से लेकर के ग्राम समाज से लेकर के, और हमारे जो हमारे मोहल्लों के जो छोटे छोटे जो नेता होते हैं, वहां से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के रशिया के राष्ट्रपति से लेकर के जो राजा लोग रहे, वे सब जो भी ताकतें, चाहे राजनीतिक ताकत हो, चाहे आत्मिक ताकत हो, चाहे भूगोलिक ताकत हो, चाहे जो भी साम्राज्य हो, चाहे जैसी जो भी जान है, शक्ति है, इट डजंट मैटर, इसीलिए कहा जाता है ना यीशु मसीह पर्याप्त है। क्यों कहा जाता है यीशु मसीह पर्याप्त है? क्यों कहा जाता है? जब सर्वश्रेष्ठता की बात की जाती है, जब यीशु मसीह की सुप्रीमसी की बात की जाती है, यीशु मसीह सुप्रीम है, यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, यीशु मसीह सर्वोच्च है, यीशु मसीह सबसे ऊपर है, यीशु मसीह सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं, इसीलिए कहा जा रहा है। तो कुलूसियों के विश्वासी कहा जा रहा है, उनको पौलुस क्या दिखा, लुक एट हिम, देखो कौन है ये तुम्हारा प्रभु, कौन है तुम्हारा प्रभु, ये आम आदमी नहीं है भैया। किससे घबराओगे तुम, किससे डरोगे, या किसके नाम पे भोकाल मारोगे? थोड़ा सा छुट भैया, नेता लोग जान जाते हैं, हम इसको जानते हैं, हमारे अंकल पुलिस में, अभी फोन लगाएं, हमारे चाचा एमएलए हैं, हम एमपी को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह जानते हो तुम? जानते कौन है यीशु मसीह? इट डजंट मैटर तुम कौन हो, इट डजंट मैटर तुम्हारे हाथ में बंदूक है, तुम्हारे हाथ में तलवार है, तुम्हारे हाथ में अधिकार है, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है, तुम्हारे हाथ में लॉ तुम्हारी तरफ है, विधान तुम्हारे पास, इट डजंट मैटर, कुर्सी पे अभी तुम बैठे हो, डजंट मैटर, वो कुर्सी भी तुमको दी गई है यीशु मसीह में होकर के, यीशु मसीह के द्वारा, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा, जो मीडियम है, जो एजेंट है, जो अभिकर्ता है, जो करने वाला है, वही है। तो डोंट बी मिस्टेकन, इस बात में घबराहट में, गलत फहमी में मत रहो, तुम तुर्रम खान नहीं हो, तुम नहीं हो, शेख चिल्ली नहीं है आप कुछ नहीं है, बनाने वाला, देने वाला, करने वाला यीशु मसीह है। तो हम लोग बैकफुट पे नहीं होंगे, हम लोग अभी वैसे समय बदल गया भैया, 2022 आ गया, राजनीतिक पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी खराब है, क्या बताएं, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते, बाइबल में जब तक लिखा है तब तक हम कह सकते हैं, चाहे हमें जो भी कीमत, नौकरी चली जाएगी, यही तो होगा ना, नौकरी चली जाएगी, यही तो, घर से निकाल देंगे ना, यही तो होगा, आपको अरेस्ट कर लेंगे ना, यही तो होगा, आपको क्या करेंगे, आपको बेघर कर देंगे ना, यही तो करेंगे, और क्या करेंगे। उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में हानि पहुंचा सकता है, घात कर सकता है। क्या डरना, तो डर किस बात का, किसकी आराधना हम लोग कर रहे हैं? शुभ संदेश, जो सुसमाचार है, शुभ संदेश इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं संपूर्णता से, क्योंकि वो सारी सृष्टि में पहलौठे हैं। वो कैसे संपूर्णता से परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और वो कैसे सारी सृष्टि में पहलौठे हैं? क्योंकि बनाया ही उन्होंने ही भैया, उन्हीं में बना है सब कुछ, उन्हीं के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ अपना अस्तित्व उन्हीं में पाते हैं। तो ऑल दिस क्रिएशन, एवरीथिंग, जो कुछ भी है आप जो है, आपकी बुद्धि, आपकी आपकी समझ, आपकी जो हैसियत है, जो आपके पास है, जो आपको दिया गया, स्वास्थ्य, सुंदरता, आपकी ख्याति, नाम, प्रसिद्धि, आपकी जो योग्यता है, जो टैलेंट है, जो गुण है, ये सब उसी में, उसी के द्वारा। किस चीज के लिए घमंड करेंगे आप, किस चीज के लिए, ये है तो मेरा आखिर भाई, कुछ तो अपना बनता ही नहीं बनता है, कुछ तो मेरा है, हक मेरा है, मेरा है। पॉलुस इसकी अनुमति नहीं देगा आपको और हमको। पॉलुस कह रहा, भाई कौन हो तुम, कौन हो तुम, समझते क्या अपने आप को, देखो तो यीशु मसीह कौन है। वो सब कुछ उसी में बनी है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण कुछ, और उसी के द्वारा बनी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात, एक और महत्वपूर्ण बात 16 पद के अंत में है, वो सब कुछ उसी के लिए सृजी गई है, सब कुछ उसी के लिए सृजी गई है। राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, हम लोग घबरा रहे हैं, यीशु मसीह सिंहासन पे परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे, घबरा नहीं रहे, वो ऐसे नहीं कर रहे, नर्वस नहीं हो रहे, यीशु मसीह दांत नहीं अपने काटते वहां बैठ, नाखून नहीं काटते अपने दांतों से, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, पता नहीं अब मसीह हो क्या होगा, यीशु मसीह घबराते नहीं है वहां पे बैठ करके। बल्कि भजन 2 में क्या लिखा है, परमेश्वर बैठा है और जब लोग, जब संसार के लोग उसके उसके राज्य के विरोध में षड्यंत्र रचते हैं तो वह हंसता है, कहता कर लो, तुमको जो करना है कर लो, लगा लो मेहनत, लगा लो बुद्धि, कर लो अपनी जो योजना है, लेकिन प्रभु जी सिंहासन पे बैठे हैं, उनका पुत्र सिंहासन पे बैठा है और वो सिंहासन हिलेगा नहीं, भले ही यहां पे जितनी उथल पुथल हो जाए, क्योंकि अंततः सब कुछ उसी के लिए हो रहा है, सब कुछ। वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, वो अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है। ही इज द गोल टेलियोस, वो अंत अंत सब कुछ का है, सब कुछ जा रहा है। तो ये गोल गोल चक्र में नहीं, हम लोग जीवन के चक्र पे नहीं विश्वास करते। एक बार मरेंगे पैदा होंगे, फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे, हम लोग नहीं विश्वास करते। हर एक मनुष्य के लिए एक बार पैदा होना, एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना निर्धारित किया गया। और एक दिन प्रभु की शुरुआत हुआ है और एक दिन अंत होगा, आरंभ के साथ अंत होगा, और अंततः वो सब में सर्वश्रेष्ठ ठहराया जाएगा। सब कुछ उसी की महिमा के लिए हो रहा है, सब कुछ उसी के लिए, उसके द्वारा, उस में। तो वो जो चाहे वो कर रहा है, आपके करने से, जुगाड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। 40 दिन 40 साल आप सोच रहे बना लेंगे मुकाम अपने लिए, आप किसके लिए जिएंगे, किसके लिए बात घूम फिर के। बाइबल की बात रेपिटेटिव है कि नहीं है, संदेश बार बार घूम फिर के वहीं आ जाता कि नहीं आता है। 100 बात की एक बात, कुलुसियों का पहला अध्याय उसका 16 पद के अंत में, सब बातें उसी के लिए सृजी गई। तो आपकी सृष्टि किस लिए हुई है? सरकारी नौकरी किस लिए सृष्टि हुई है? बस 10,000 रुपये और मिल जाए, किस लिए सृष्टि हुई है? बस छुट्टियां मना लें, छुट्टियां मना लें। हमारी हमारी जो बकेट लिस्ट है, हमारी इच्छा है मरने से पहले इंडिया के जितने जगह हैं घूमने वाली पर्यटक स्थल हैं उनको देख लें, बस यही हमारी हमारी क्या क्या है आपकी इच्छा? किस लिए जी रहे? नाम छोड़ के जाना भैया, किस लिए जी रहे? इस जो, 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 मदर अर्थ है, ये जो माँ है जो हमारी, इसको थोड़ा और बेहतर बना के जाना है और हरा भरा करके जाना है। किस लिए जी रहे आप? किस लिए आपका जीवन किसके लिए? मैं लुक एट दिस, ये पॉलुस क्या कह रहा है? या तो आप इसके साथ अलाइन होंगे, इसके साथ मिलेंगे, या तो आप इसके साथ मिलेंगे, या तो आप इसके साथ जुड़ेंगे, या तो आप इसके विरोध में जाएंगे। आपको क्या लगता है आपका जीवन इसके साथ में चलना है कि इसके विरोध में चलना, बताइए? और बुद्धिमानी क्या होगी, बुद्धिमानी क्या होगी, इसके साथ चलने के लिए कि इसके विरोध में चलने के लिए? बस 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 भैया, बस सेविंग कर ले, थोड़ी सी सेविंग, बस सेटल हो जाए भैया, बस सेटल हो जाए। उसे कितना सेटल होंगे, कब तक सेटल होंगे? थोड़ी सी सेविंग, कब तक की सेविंग? एक मकान, कब तक का मकान, कब तक करेंगे? किसके लिए हो रहा है ये सब? भैया ये सब है तो प्रभु के लिए, झूठ ना बोलिए, धोखा मत दीजिए। अपने को भी धोखा देते हैं और सामने वालों को भी धोखा दे रहे हैं। लुक विथ मी इन दिस टेक्स्ट, वर्स 16 के एंड में, सब कुछ उसी के लिए सृजी गई हैं जिसमें अपना नाम भी लिख दीजिए, मैं भी उसके लिए सृजा गया हूँ। पिछले हफ्ते मैंने जीवन ऐसे जिया जैसे मानो मैं उसके लिए बनाया गया हूँ। डिड आई? क्या मैंने ऐसे किया? अगले 5 साल की जो आपकी योजना है वो क्या दिखाती हैं? किसके लिए जीना चाहते हैं अगले 5 साल? टेल मी, 5 साल, अगले 5 साल के गोल क्या हैं आपके जीवन के? बताइए क्या है अगले 5 साल के गोल आपके? और यीशु मसीह के लिए भैया, क्या यीशु मसीह के लिए? टेल मी एग्जैक्टली, बताइए, सच बताइए, ईमानदारी से, बेईमानी मत करिए, किसे झूठ बोलें? प्रभु जी जानते, सब जानते हैं। प्रभु जी महान हैं, प्रभु जी सर्वशक्तिमान हैं, उनके जैसा कोई नहीं, सब कुछ उन्हीं के लिए, हर एक बातें उन्हीं में अपना उद्देश्य पाएंगी, या तो उसको महिमा देने के लिए स्वतः अपनी इच्छा से खुशी से जीते हुए, या तो मरने के बाद घुटनों पे जबरदस्ती मुंह खुलवा करके उसकी महिमा देने के लिए। वो महिमा कराएगा अपनी, वो महिमान्वित होगा, या तो स्वतः खुशी से अपनी मर्जी से उसकी सच्चाई को जानते हुए, या तो जबरदस्ती एक दिन, क्योंकि कोई और चारा नहीं होगा। या तो हम प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे, या तो हम अपनी महिमा के लिए जिएंगे। 17 पद में पौलुस रुकता नहीं है, पौलुस आगे बढ़ता चला जाता है। पौलुस कहता है भैया ये जो यीशु मसीह है ये सब बातों में प्रथम है। तो जब यहाँ पे जो प्रथम शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, फर्स्ट है, तो यहाँ पे बात कर रहा है उसके आरंभ से, वो आरंभ से है, वो हमेशा से अस्तित्व में, प्री एग्जिस्टेंस, उसके हमेशा से, संपूर्णता, पहले से, वो पहले से अस्तित्व में है, वो सब चीज़ों से पहले। तो कोई भी चीज़ देखोगे, तो कोई भी चीज़, नंबर एक है तो नंबर एक से पहले जो आएगा वो है, तो उससे पहले अगर कोई नंबर आएगा उससे पहले वो यीशु मसीह है। अगर आपके परदादा थे परदादा से पहले तो वो यीशु मसीह, वो परदादा के परदादा परदादा के परदादा के उनसे पहले वो यीशु मसीह हैं। अगर इस दुनिया में कुछ था वो सबसे पहले तो उसके पहले वो यीशु मसीह हैं। हर एक मायने में सबसे पहले हैं, और उनका अस्तित्व सबसे पहला है, और उनका स्थान सबसे पहला है, उनका औहदा सबसे पहला है, वो ऊंचाई सबसे ज्यादा उनकी, अधिकार उनका है, अधिकार उनका है। यीशु मसीह अद्भुत हैं, यीशु मसीह आम आदमी नहीं है। और ये जो यीशु मसीह हैं 17 पद के अंत में संपूर्ण वस्तुएं क्या किए हुए हैं, थामे हुए हैं। इन हिम, उन में, उस में, उसमें, उसी में स्थिर रहती हैं। तो आपका जीवन अभी जो चल रहा है इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि आप मल्टीविटामिन्स रोज खाते हैं, इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि आप बीपी और शुगर की दवाई टाइम पर ले लेते हैं आप, इसलिए आप ठीक नहीं है क्योंकि आपकी डाइट अच्छी है ना। वो तो ठीक है, वो प्रभु जी है, वो करना है, ये सब साधन है, ये सब एजेंट, इनको करना है, हमको एक्सरसाइज करना है, खाना है, मेहनत करनी है, नौकरी पे जाना है, बिजनेस करना है, ये सब तो करना है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि प्रभु जी संभाल करते। तो पानी बरसता है इसलिए नहीं बरसता है क्योंकि वो वाटर साइकिल के अनुसार चल रहा है। पानी बरसता है, वाटर साइकिल हमको एक्सप्लेन करता है कैसे हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह संभाल रहे हैं। मानसून आता है यीशु मसीह के कारण, सूरज उगता है और डूबता है यीशु मसीह के कारण। तो हम ग्रेविटी समझा सकते हैं, हम लोग न्यूटन के लॉ को समझा सकते हैं, हम इनर्शिया को समझा सकते हैं, हम फोर्स को समझा सकते हैं, एक्सेलरेशन को समझा सकते हैं, ये सब हैं समझाने के लिए, लेकिन संभाले हुआ है यीशु मसीह। ये जो लॉज हैं, जो साइंस और फिजिक्स के, जो हमारे रसायन शास्त्र और ये सारे लॉज हैं, ये समझाते हैं कि प्रभु जी कर क्या रहे हैं, करने वाले यीशु मसीह। यीशु मसीह एक मिनट एक क्षण के लिए हाथ छोड़ देंगे तो जो ग्रह अपने ऑर्बिट में जो नाच रहे हैं वो खड़बड़ा जाएंगे। एंड ये फेंका नहीं जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अतिशयोक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि सृष्टि क्या, उसी ने अपने हाथ से तारों को क्या किया, फेंका था यहाँ से वहाँ। अच्छा तुम वहाँ पे जाओ, तुम वहाँ पे जाओ, तुम यहाँ पे रहो, तुम इस तुम्हारा ये क्षेत्र है, तुम्हारा ये, तुमको इस तरह से करना है, अलग अलग यीशु मसीह बनाने वाले। तो जो 15 पद से लेकर 17 पद में बार बार पौलुस अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके हमको एक ही बात बता रहा है, यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में, सब कुछ को संभाले हुए, सब कुछ को उन्होंने बनाया, सब कुछ उनमें। आप जब यीशु मसीह के बारे में सोचते तो क्या सोचते हैं? जिस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम किस तरह से जीवन व्यतीत, क्या हम वास्तव अपने जीवन से दिखाते हैं कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं संपूर्ण सृष्टि में? क्या हम वास्तव में समझते हैं कि सुसमाचार शुभ संदेश है क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है? क्या हम यीशु मसीह की श्रेष्ठता को मानते हैं, जानते हैं, दिखाते हैं अपने जीवनों में, या हम दूसरी चीजों को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं? किस चीज से आप बहुत अधिक स्नेह करते हैं बताइए, कौन सी चीज आप सोचते हैं आपको मिल जाएगी तो फिर जीवन भला चंगा हो जाएगा? अच्छा कौन सी चीज है अगर आपके जीवन से चली जाएगी तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा? कौन सी चीज है, कौन सी बात है, कौन सा जन है जो आपके जीवन से अगर अभी चली जाए, हट जाए, तो आप कहेंगे अरे जीवन बेकार है? क्या वहां पे यीशु मसीह पाया जाता है? अगले 5 साल की योजनाओं में आपके कैसे यीशु मसीह उसमें दिखाई देता है? यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा संभाले हुए, क्या ये 4 बातें हमारे जीवन से दिखाई देती हैं? अगर आज आप पहली बार यहां पे आए हैं, आप यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप यीशु मसीह की सर्वश्रेष्ठता को समझेंगे और यीशु मसीह को फिर से दोबारा अन्य गुरुओं, भगवानों, ईश्वरों की श्रेणी में नहीं रखेंगे, और आप जान जाएंगे कि बाइबल के अनुसार स्पष्ट है यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। अगर आप मसीह हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु जी से पश्चाताप करिए कई उन कारण बातों से जैसे हमने नहीं दिखाया है अपने हफ्ते में, अपने समय में, अपने पैसे में, अपनी भावनाओं में कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि हमने दिखाया है पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, इज्जत, ये सर्वश्रेष्ठ है। और प्रार्थना करिए अपने लिए कि प्रभु जी मेरी सहायता करिए कि अपनी दृष्टि इस सर्वश्रेष्ठ यीशु की ओर लगा सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें।